आघे गाए पाछे गाए, इत गाए उत गाए, गोविंद को गायन में बसी बोही भावे। अष्टछाप के सखा श्री चित स्वामी भगवान के इस भाव का वर्णन करते हैं कि गोविंद को गायन में बसी वो ही भावे, कहीं मिले न मिले लेकिन गौ माता के आसपास गोविंद गोपाल अवश्य होते हैं। भगवान को एक यद्यपि सब नाम प्रिय है किंतु गोविंद नाम विशेष कर ठाकुर जी को प्रिय है, क्योंकि ये गोविंद नाम भगवान का स्वयं गौ माता ने ही रखा था। जब भगवान गिरिराज धारण करते हैं, इंद्र का मान मर्दन करते हैं, इंद्र आता है, क्षमा मांगता है, तो थोड़ा डरा हुआ था कि उसने अपराध किया है भारी, तो गौ माता को साथ लेकर के आया था। और उसी समय में गौ माता ने ही भगवान को गोविंद नाम से पुकारा था, गोविंद नाम से संबोधन किया था, तो इसलिए ये नाम बहुत प्रिय है भगवान को। और महाभारत में एक प्रसंग भी आता है द्रौपदी का। द्रौपदी जब चीरहरण हो रहा था उस समय द्रौपदी ने भी भगवान को गोविंद नाम से ही पुकारा था, क्योंकि द्रौपदी जानती थी कि ये नाम ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, शायद इस नाम से पुकारूंगी तो जल्दी आएंगे, अति शीघ्र मेरे पास आएंगे और मेरी रक्षा करेंगे। तो उसी भाव को लेके जो शीत स्वामी का भाव था वो भाव आज यहाँ चरितार्थ हो रहा है। आगे गाए पाछे गाए, इत गाए उत गाए, और बीच में भगवान की कथा, भगवान की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत विराजमान है, अर्थात साक्षात श्री ठाकुर जी विराजमान है गायों के मध्य में और हम सब पर कृपा कर रहे हैं। तो इसी आनंद में हम सभी स्नान करते हुए विगत दो दिनों से भगवान की लीलामृत का रसास्वादन कर रहे हैं। अब आइए श्रीमद् भागवत की जो परंपरा है मंगलाचरण की, उस मंगलाचरण के माध्यम से वेदव्यास जी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। तो इस मंगलाचरण के मुख्य श्लोक हम सब गान करें। आरंभ होता है श्रीमद् भागवत का और श्री वेद व्यास जी ने भगवान को प्रणाम करते हुए वर्णन किया। श्री मद और भागवत इनका हम सब श्रवण पान कर चुके हैं। जन्माद्यशयतुन्वयादितरतः, इस श्लोक को अगर आप कहते हैं श्रीमद् भागवत अथा ग्रंथ है, और ये इस बात से सिद्ध हो जाता है कि भागवत की प्रथम श्लोक की व्याख्या भी करना बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि एक ही श्लोक में कई सारे अनेक प्रकार के भाव व्याप्त हैं, और उन अनेक प्रकार के भावों को जो श्रीमद् भागवत के ऊपर टीका करते हैं, भाष्य लिखते हैं, वो उन अलग अलग भावों को अपनी अपनी टीकाओं में विस्तार से वर्णन करते हैं। तो इस श्लोक का जो श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक है, इस श्लोक की भी बड़ी सुंदर सुंदर व्याख्याएं शास्त्रकारों ने की है। एक व्याख्या जो ब्रज परक व्याख्या है, क्योंकि हम ब्रजधाम में बैठे हैं, तो फिर ब्रज में बैठे हैं तो इस भागवत के प्रथम श्लोक की ब्रज परक व्याख्या कैसी है? और इस श्लोक, जैसा मैंने कल कहा था कि इसी एक श्लोक में भगवान की ब्रज की जितनी भी ठाकुर जी ने लीलाएं की हैं उन सब का वर्णन किया गया है। कैसे? कहा जन्म, जन्माद्यश्य यतः, यतः अश्य जन्मादि। जन्म होते ही जो श्री वसुदेव जी को आज्ञा दे करके, उनको कह करके कि मुझे गोकुल छोड़ाइए, स्वयं सारी प्लानिंग बना करके जन्म होते ही जो अपने वंश से अलग हो गए, अन्वयाद कहते हैं वंश को, और इतरतः यानी अलग हो गया। जन्म लेते ही जो अपने वंश से अलग हो गया, यानी किसकी स्तुति की जा रही है या किसकी कथा सुनने जा रहे हो आप, ये व्यास जी श्लोक में बता रहे हैं। आगे कहते हैं अर्थेषु अभिज्ञ, अब यहां से ब्रज लीला आरंभ होती है। कहते हैं कि जिसने पूतना जैसी राक्षसी जो अपने हृदय में अलग कामादि लेकर के श्री कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुई, भगवान सब जानते थे, अभिज्ञ थे। ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं कि इस पूतना के इस मेकअप के पीछे कौन छुपा हुआ है। बाहर से सुंदर बढ़िया बन के आ गई, सुंदर साज श्रृंगार करके आ गई, पर इसके पीछे कौन है इस बात से वो अभिज्ञ थे, जानते थे, पता था। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघान सया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। पूतना एक राक्षसी भले है, लेकिन भागवत में अगर सुखदेव जी के अनुसार देखा जाए तो पूतना प्रणम्य है, प्रणाम के योग्य है, क्योंकि पूतना के उदाहरण से भगवान की भक्त वत्सलता का उदाहरण प्राप्त होता है कि देखो जहर पिलाने वाली को भी ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं। वो आई है मारने और ठाकुर जी सोच रहे मौसी आ गई हमारी, और ठीक वैसा ही प्रेम भी दे रहे हैं। वो बात अलग है कि आते ही उसके ठाकुर जी ने आंखें अपनी बंद कर ली, जैसे कोई बालक उसको कड़ी हुई दवाई पिलाओ तो आंख बंद करके एक घूंट में पी जाता है। तो आंख तो बंद की, लेकिन हृदय से जानते हैं कि ये कौन है, इसलिए अर्थेषु अभिज्ञ। और फिर व्यास जी लिखते स्वराट, स्वराट यानी वो भगवान जिनके स्वरूप से ऐसा प्रकाश प्रकट होता है, जो इतने स्वराट रूप में है कि जब गोपी के घर माखन चुरावे लाला जावे है और मैया उनते गोपीन ते कहवे ही कि गोपी कन्हैया ते माखन बचानो है तो तू माखन को कहीं अंधेरे में रख दे, कहीं भीतर जाके कहीं कोने में जहां जहां लाला की नजर ही नहीं पड़े। वत्सान मुंचान क्वचित समय, गोपी आके शिकायत कर रही है मैया को। मैया पहली शिकायत तो हमारी यह है कि यू तेरो छोरा कभी भी आवे और हमारे जो बछड़ा हैं वत्सान मुंचत क्वचित समय, किसी भी समय आके उन बछड़ों को खोल देता है।